पृष्ठ संख्या 72 अध्याय 5 पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन मानव के इतिहास की रचना करने में सहायक पुरावशेषों को खोजने की एक विशिष्ट विधि है। पुरातात्विक उत्खनन का उद्देश्य मानव के अतीत के संबंध में ऐसे तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करना है जिनके अध्ययन तथा विश्लेषण के आधार पर मानव के समग्र इतिहास की यथासंभव संरचना की जा सके। मानवकृत पुरावशेषों को खोज निकालने की पुरातत्व में अभी तक जितनी विधियां ज्ञात हैं, उत्खनन की विधि उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से प्राप्त पुरावशेष अपने पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य में मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक है कि उत्खनन क्यों और किस लिए किए जाते हैं। पुरातात्विक उत्खनन के कारणों को प्रमुख दो भाग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अनुसंधानार्थ उत्खनन, दो बचाव उत्खनन। अनुसंधानार्थ उत्खनन इस कोटि में वे उत्खनन कार्य आते हैं जो किसी विशिष्ट प्रकार की शोध परियोजना के संदर्भ में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। अनुसंधानार्थ उत्खनन इस कोटि में वे उत्खनन कार्य करते हैं जो किसी विशिष्ट प्रकार की शोध परियोजना के संदर्भ में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। किसी क्षेत्र अथवा काल के संबंध में उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व विद्यमान समस्याओं एवं उत्खनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान इस प्रकार के उत्खननों के माध्यम से करने की यथासंभव चेष्टा की जाती है। बचाव उत्खनन। आजकल नगर विन्यास, सड़क एवं सिविल लाइन के निर्माण अथवा नहर की खुदाई, बांध के निर्माण आदि विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप बहुत से पुरास्थलों के अस्तित्व के विनाश का संकट उत्पन्न होता रहता है। ऐसी स्थिति में पुरातात्विक दृष्टि से ऐसे स्थलों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ये परिस्थितियाँ पुरातत्वविद ने स्वयं जानबूझकर नहीं पैदा की है। इस प्रकार का उत्खनन जल्दी जल्दी और कभी कभी अत्यंत विषम परिस्थितियों एवं प्रतिकूल मौसम में करना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार के बचाव उत्खनन से पर्याप्त पुरातात्विक जानकारी अधूरी एवं एकांगी हो सकती है, लेकिन यदा कदा इस प्रकार के उत्खनन से भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। पृष्ठ संख्या 73। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में शारदा नहर के चौड़ी करने के उपक्रम में सन 1978 में महदहा नामक स्थल पर बचाव उत्खनन के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग को मध्य पाषाणिक 28 मानव शवाधानों एवं अन्य पुरावशेषों के विषय में अत्यंत उल्लेखनीय जानकारी हुई है। सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित उत्खनन को भी वस्तुतः एक प्रकार से विनाश कार्य कहा जा सकता है। जिस स्थल अथवा टीले की एक बार खुदाई करके उसके प्राचीन स्तर क्रम को नष्ट कर दिया जाता है, उसे इसके मूल रूप में पुनः प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी वैज्ञानिक द्वारा अपनी प्रयोगशाला में अनुसंधान संबंधी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें किसी अन्य देश अथवा काल का वैज्ञानिक सुधार कर सकता है, लेकिन पुरातत्व संबंधी उत्खनन कार्य में इस प्रकार की त्रुटि में परिमार्जन की संभावना बहुत कम है। इसलिए उत्खनन कार्य बहुत सोच समझकर तथा सावधानी के साथ करने की विशेष आवश्यकता है। उत्खनन पद्धति का विकास। 19वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व तक उत्खनन अव्यवस्थित ढंग से होते रहे हैं तथा कतिपय क्षेत्रों में तो 19वीं शताब्दी ईस्वी और उसके बाद भी उत्खनन की मानक विधियों का प्रचलन नहीं हो सका। उत्खनन की विभिन्न पद्धतियों का शनै शनै विकास हुआ। प्रारंभिक उत्खननकर्ताओं का उद्देश्य समाधियों, बारोस तथा प्राचीन टीलों को खोदकर पुरानी मूल्यवान पुरानिधियों को खोजना था, इसलिए स्तरीकरण आदि के संबंध में प्रायः कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उत्खनन के स्तर क्रम आदि का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने वालों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तृतीय राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जेफरसन ने सन 1784 में अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक टीले का उत्खनन किया था, लेकिन जेफरसन की उत्खनन पद्धति का पुराविद उत्खननकर्ताओं ने अनुसरण नहीं किया। हेनरिक स्लीमन, फ्लिंडर्स पेत्री, पिट रिवर्स, लियोनार्ड वुली, आर्थर इवांस, जॉन मार्शल तथा मार्टिमर व्हीलर आदि पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा संचालित खुदाइयों के फलस्वरूप उत्खनन पद्धतियों का उत्तरोत्तर परिष्कार होता गया। उत्खनन की तकनीक एवं विवरण तैयार करने की विधियों का धीरे धीरे विकास होता गया। उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरावशेषों एवं पुरानिधियों का विवरण तैयार करने की त्रिविमतीय पद्धति के प्रवर्तन का श्रेय पिट रिवर्स को है। इस विधि को भारत में सुप्रचारित एवं लोकप्रिय बनाने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर और उनके द्वारा प्रशिक्षित भारतीय पुरातत्वविदों को दिया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 74। उत्खनन प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 20वीं शताब्दी ईस्वी के विगत 2-3 दशकों में उत्खनन के द्वारा पुरावशेषों को खोजकर निकालने की विधियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन उत्खनन प्रारंभ करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे सभी देशों एवं पुरास्थलों पर समान रूप से लागू किया जा सके। उत्खनन कार्य आरंभ करने में यथासंभव सावधानी रखने की आवश्यकता पर सभी विशेषज्ञों ने विशेष जोर दिया है। उत्खनन आरंभ करने के पूर्व एक सुनिश्चित योजना तैयार कर लेना बहुत आवश्यक है। आवश्यक रूपरेखा तैयार किए बिना प्रारंभ किए गए उत्खनन के खाइयों एवं गड्ढों का एक समूह मात्र बनकर रह जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण और लेखा जोखा तैयार करना अत्यंत दुष्कर हो सकता है। कभी कभी तो इस प्रकार का उत्खनन इतना अव्यवस्थित हो सकता है कि उत्खननकर्ता को बीच में ही उत्खनन कार्य समाप्त कर देने के लिए बाध्य हो जाना पड़ जाए। अगर उत्खनन को आगे जारी रखना जरूरी हो तो फिर उसे सुधारने में अतिरिक्त समय एवं धन लगाना पड़ सकता है। संक्षेप में कहने का आशय यह है कि अव्यवस्थित उत्खनन विन्यास ठीक नहीं है। उत्खनन विन्यास योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए। सुनियोजित ढंग से उत्खनन करने पर भी कुछ ऐसी अड़चनें आ पड़ती हैं जिनका पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। इस प्रकार के आकस्मिक कठिनाइयां उत्खनन में आनी सहज स्वाभाविक है। उत्खनन की योजना की रूपरेखा कैसे बनाई जाए, यह बहुत कुछ पुरास्थल की विशेषताओं पर निर्भर करता है। किसी बड़े पुरास्थल या टीले आदि पर उत्खनन योग्य प्रायः अनेक स्थल होते हैं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त स्थल का चयन करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो जाता है। किसी क्षेत्र में सभी स्थलों का उत्खनन करना न तो संभव ही है और न ही आवश्यक एवं वांछनीय है। उपयुक्त स्थल का चयन उसके संभावित पुरातात्विक महत्व, भौगोलिक स्थिति, यातायात एवं परिवहन की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। किसी पुरास्थल का उत्खनन केवल इसीलिए नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर दबे पुरावशेषों का पता चल सके। पुरातत्वविद मुख्यतः दो उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर किसी पुरास्थल का उत्खनन करते हैं। प्रथम, उस पुरास्थल के सांस्कृतिक अनुक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और द्वितीय, विभिन्न कालों की पुरातात्विक सामग्री का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए। उत्खनन प्रारंभ करते समय अधोलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा सकता है। 1. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व संबद्ध स्थल का सर्वेक्षण करके उसका मानचित्र एवं रेखाचित्र तैयार करना एवं फोटोग्राफ छायांकन करना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 75। 2. उत्खनन की रूपरेखा इस प्रकार की हो कि उसका संचालन, नियंत्रण तथा अंकन रिकॉर्ड सरलता से किया जा सके। 3. प्रारंभिक आधार रेखा को तोड़े अथवा क्षति पहुंचाए बिना किसी भी दिशा में आवश्यकता अनुसार तथा आसानी से उत्खनन कार्य का विस्तार किया जा सके। 4. उत्खनन की पूर्ण समाप्ति तक अधिक से अधिक स्थलों पर पूर्ण ऊर्ध्व अथवा खड़ी काट वर्टिकल सेक्शंस छोड़े जा सके। 5. उत्खनन के छोटे छोटे विभिन्न वर्गों को एक में मिलाकर एक विस्तृत क्षेत्रीय उत्खनन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। छे, उत्खनन के दौरान निकलने वाली मिट्टी आदि को बिना किसी अड़चन के सुगमता से बाहर निकाला जा सके, साथ ही साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से गमनागमन संभव बना रहे। 7. अभिष्ट गहराई तक खुदाई करने के लिए पर्यवेक्षण तथा परीक्षण एवं पर्याप्त प्रकाश की सुविधा हो। 8. तिथि निर्धारण एवं रासायनिक परीक्षण के लिए अभिष्ट नमूने सरलता से इकट्ठा किए जा सके। उत्खनन विन्यास, उत्खनन के लिए चुने गए स्थल के क्षेत्र को वर्ग प्रणाली ग्रिड सिस्टम के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। एक दूसरे से सटी हुई पंक्तियों की वर्गाकार खांतियां ट्रेंचेट्स डाली जाती हैं। समीपवर्ती दो वर्गाकार खंतियों के बीच में लगभग 1 मीटर चौड़ी एक पगडंडी अथवा मेड़ बॉल्क छोड़ दी जाती है। उत्खनन के दौरान निकली हुई मिट्टी आदि को फेंकने के लिए इस पगडंडी का उपयोग रास्ते के रूप में किया जाता है। उत्खनन के विशेषज्ञ पुराविदों का मत है कि औसत दर्जे की टिकाऊ मिट्टी वाले पुरास्थल पर वर्गों का पड़े बल हॉरिजॉन्टल परिमाप डिमेंशन उनकी अनुमानित गहराई के लगभग बराबर रखा जाता है। जैसे यदि 10 मीटर की गहराई तक पुरावशेषों के मिलने की संभावना हो तो वर्ग की एक भुजा का माप 11 मीटर रखी जाए। 1 मीटर जगह चारों ओर पगडंडी के लिए 11 मीटर के वर्ग में छोड़ दी जाएगी। इस प्रकार उत्खनन के लिए जो वास्तविक क्षेत्र मिलेगा वह 10 मीटर का वर्गाकार क्षेत्र होगा। भारत में आद्य ऐतिहासिक स्थलों के लिए यह प्रायः उपयुक्त माप है। इस प्रकार के वर्गाकार क्षेत्र की 10 मीटर की गहराई तक सरलता से खुदाई की जा सकती है। इस खंती में काम के लिए पर्याप्त स्थान एवं प्रकाश आसानी से सुलभ हो सकेगा। प्रागैतिहासिक पुरास्थलों के लिए एक एक वर्ग मीटर माप भी उपयुक्त रहती है। वर्गाकार प्रणाली से उत्खनन की पृष्ठ संख्या 76। प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें देखरेख एवं लेखा जोखा तैयार करने में आसानी होती है। पर्यवेक्षक या निरीक्षक सुपरवाइजर को अपने उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्रों की सही जानकारी रहती है। उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व वर्गाकार खाई के चारों ओर दो समानांतर कतारों में खूंटियां पिग्स गाड़ दी जाती हैं। खूंटियां लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 वर्ग सेमी के आकार की उपयुक्त होती हैं, जिनका निचला सिरा नुकीला हो। खूंटियों का कोणात्मक रुख डायगोनल वर्गाकार खाई की ओर रखकर जमीन में मजबूती से गाड़ दिया जाता है। प्रत्येक खूंटी के ऊपरी सिरे के मध्य में 5 सेमी लंबी लोहे की एक नुकीली कील नेल इस प्रकार लंबवत गाड़ दी जाती है कि वह कील लगभग 2 सेमी खूंटी से बाहर निकली रहे। सर्वेक्षण एवं नापजोक के लिए डोरी या फीते टेप को बांधने के लिए इस कील का उपयोग किया जाता है। खूंटियों के स्थान पर उपयुक्त माप की कीलें भी गाड़ी जा सकती है। खंती की फोटोग्राफी में कीलें अधिक उपयुक्त रहते हैं। रेखाचित्र 1, खूंटियों से युक्त वर्गाकार खाई का चित्र। खाई से खूंटियों की दूरी 50 सेंटीमीटर एवं एक खूंटी से दूसरे की दूरी 1 मीटर रखी जाती है। खूंटियों के इस प्रकार गाड़ दिए जाने के बाद प्रत्येक खूंटी का नामकरण किया जाता है। यह नामकरण एक दिशा में रोमन अंकों में तथा दूसरी दिशा में रोमन अक्षरों की सहायता से किया जाता है। जैसे पूर्व से पश्चिम दिशा में यदि रोमन अंकों का प्रयोग किया जाए तो उत्तर से दक्षिण अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। खूंटियों को एक तरफ की कतार के अंकों एवं अक्षरों के ऊपर डैश लगाकर उन्हें दूसरी तरफ की कतार के अंकों तथा अक्षरों से पृथक किया जाता है। अंकों और अक्षरों को काली पॉलिश से पृष्ठ संख्या 77 खूंटियों पर साफ साफ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है। शून्य को छोड़कर रोमन अंकों का प्रयोग 2 विशिष्ट कारणों से किया जाता है। 1, रोमन अंकों का अंकित करना आसान है। 2, रिकॉर्ड के वास्तविक माप में इनसे गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। उत्खनन के दौरान यदि खाई को शून्य से पीछे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इस प्रकार बढ़ाई गई खूंटियों के लिए रोमन बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए बी सी आदि। समानांतर दूसरी कतार के अक्षरों को डैश चिन्ह से पृथक करते हैं, जैसे ए डैश बी डैश सी डैश आदि। खूंटियों के गाड़ दिए जाने के पश्चात प्रत्येक वर्ग का एक खास नाम हो जाता है, जैसे A1, A2, A3 और B1, B2, B3 आदि। इसके बाद खूंटियों की प्रत्येक कतार के सामने वाले किनारों के पास से एक एक डोरी खींच कर बांध दी जाती है। ये डोरियां आधार रेखाओं का काम करती हैं, जिसे बाद में माप ली जाती है। किसी पुरास्थल के उत्खनन में उत्खनन पद्धतियों का पूर्वापर क्रम इस प्रकार रखा जा सकता है: 1 शैर्षिक उत्खनन, 2 क्षैतिज उत्खनन। नियंत्रण गर्त उत्खनन पद्धति में नियंत्रण गर्त कंट्रोल पिट का अपना विशिष्ट स्थान है। नियंत्रण गर्त की खुदाई पर्यवेक्षक को स्वयं करनी चाहिए अथवा किसी प्रशिक्षित एवं चतुर सहायक को यह कार्य आवश्यकता पड़ने पर सौंपा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार नियंत्रण गर्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एक से अधिक नियंत्रण गर्त रखने से लाभ ही होता है। नियंत्रण गर्त का स्तर खंति के सामान्य स्तर से आवश्यकता अनुसार 15-20 सेमी गहरा रखते हैं, ताकि इस बात की अग्रिम जानकारी होती रहे कि वही स्तर चल रहा है अथवा कोई नया स्तर शुरू हो रहा है। इससे किन्हीं स्तरों के पुरावशेषों के मिल जाने की संभावना कम हो जाती है। खंति के चारों सेक्शनों अनुभागों का समन्वय एवं समीकरण होता जाता है। स्तरों की असंबद्धता की छानबीन करना संभव हो जाता है। मापन पद्धति पुरातात्विक उत्खनन में विभिन्न स्तरों लेयर्स से प्राप्त होने वाले पुरावशेषों का अत्यंत सावधानी के साथ लेखा जोखा तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार का विवरण पंजिका साइट नोटबुक में प्रतिदिन अंकित किया जाता है। नोटबुक के प्रथम स्तंभ फर्स्ट कॉलम में पुरास्थल का नाम एवं प्राप्त पुरावशेषों फाइंड्स का क्रमांक सीरियल नंबर अंकित किया जाता है। मार्टिमर व्हीलर ने प्रथम स्तंभ में अंकित क्रम संख्या को एक त्रिभुज से घेर देने की परंपरा का प्रचलन किया था। दूसरे खाने में पुरावशेष की माप अंकित की जाती है। पृष्ठ संख्या 78। यह स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उत्खनन के विवरण का यही स्तंभ सारांश होता है। पुरावशेषों का त्रिविमितीय माप 3-डायमेंशनल मेजरमेंट ली जाती है। त्रिविमितीय माप अधोलिखित ढंग से ली जाती है। लंबवत अथवा अनुदैर्ध्य माप लंबवत अथवा अनुदैर्ध्य माप में पुरावशेष के प्राप्ति स्थल की निकटतम खूंटी या किल से दूसरी खूंटी या किल के बीच की लंबवत दूरी की माप ली जाती है। जैसे यदि कोई पुरावशेष 1 नंबर की खूंटी से 5 मीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ हो तो उसे वस्तुतः 5 नंबर वाली खूंटी से नापा जाएगा। इस नाप को B1.50 मीटर अंकित किया जाएगा। बहिर्मुखी माप आउटवर्ड मेजरमेंट बहिर्मुखी माप आधार रेखा डॉटम लाइन से ली जाती है, न कि खाई के वास्तविक पार्श्व एक्चुअल साइड से। किसी नंबर की एक निश्चित खूंटी से खाई की ओर की दिशा में पुरावशेष की दूरी की नाप को बहिर्मुखी माप कहते हैं। इस माप को लंबवत माप के बाद गुणा के चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है। यदि डेटम रेखा से 1.25 मीटर की दूरी पर कोई पुरावशेष प्राप्त हुआ हो तो उपर्युक्त उदाहरण में अभी तक की माप को इस प्रकार अंकित किया जाएगा: V1.50 मीटर × 1.25 मीटर। गहराई अथवा अधोमुखी माप डाउनवर्ड मेजरमेंट, अधोमुखी माप, आधार रेखा से पुरावशेष की प्राप्ति स्थान की खड़ी गहराई वर्टिकल डेप्थ की माप होती है। यह माप फीते, टेप या डंडे, रूल और साहुल, प्लम्बॉप तथा गुनिया, एंगल मेजर की समकोण भुजा की सहायता से ली जाती है। नोटबुक में इस माप को ऋण चिन्ह से अंकित किया जाता है। जैसे यदि गहराई 5 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो पूरा रिकॉर्ड इस प्रकार हुआ, वी 1.50 मीटर इंटू 1.25 मीटर माइनस 5.20 मीटर। रेखाचित्र 2, उत्खनन का मापन का चित्र, पृष्ठ संख्या 79, पृष्ठ संख्या 79। तीसरे खाने में स्तर की क्रम संख्या अंकित की जाती है। किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे इसलिए स्तर संख्या को वृत्त सर्कल से घेर देने की परिपाटी मार्टिमर व्हीलर ने चलाई थी। स्तरों की गणना ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। यदि स्तर के विशिष्ट रंग एवं संरचना के आधार पर उसे कोई विशिष्ट नाम दिया जा सके तो ज्यादा अच्छा रहता है। पुरातत्व में स्तरों का वही महत्व है जो किसी पुस्तक में उसके क्रमबद्ध पृष्ठों का होता है। जिस प्रकार पुस्तक के पृष्ठों के अस्त व्यस्त हो जाने पर पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय को समझने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार दोषपूर्ण अथवा गलत स्तर क्रम के आधार पर उत्खनित स्थल के इतिहास का यथातथ्य विवरण प्रस्तुत करने में कठिनाई हो सकती है। चौथे खाने कॉलम में प्राप्त पुरावशेष का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। पांचवें स्तंभ में पुरावशेष का रेखा चित्र, स्केच आदि बनाया जाता है और विशेष विवरण रिमार्क लिखा जाता है। उत्खनन की विधियां, पुरावशेषों एवं पुरानिधियों को उसके समग्र परिप्रेक्ष्य में खोज निकालने के साधनों में उत्खनन का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। किसी पुरास्थल का उत्खनन आजकल कतिपय विशिष्ट पुरातात्विक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। किसी पुरास्थल के उत्खनन की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि सीमित किंतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल खोजा जा सके। किसी पुरास्थल के उत्खनन का औचित्य मात्र इसलिए नहीं है कि उसके उत्खनन के से कुछ न कुछ पुरावशेष अवश्य प्राप्त होंगे। प्रारंभ में विधि विहीन उत्खनन का प्रचलन था, लेकिन आजकल उत्खनन की प्रमुख दो विधियां अधिक प्रचलित हैं, एक लंबवत अथवा शीर्षक उत्खनन वर्टिकल एस्केवेशन, दो क्षैतिज उत्खनन हॉरिजॉन्टल एस्केवेशन। लंबवत अथवा शीर्षक उत्खनन किसी पुरास्थल पर संस्कृतियों के क्रम को जानने के लिए लंबवत अथवा ऊर्ध्वाधर उत्खनन किया जाता है। लंबवत उत्खनन का आशय किसी सीमित क्षेत्र में गहराई तथा उत्खनन करने से है, जिससे उस स्थल की विभिन्न संस्कृतियों अथवा अवस्थाओं का समुचित अनुक्रम ज्ञात हो सके। उस प्रकार के उत्खनन के फलस्वरूप उस स्थल का संस्कृति मान या समय मान टाइम स्केल तैयार किया जा सकता है। इस उत्खनन से यह जानकारी मिलती है कि किसी प्रागैतिहासिक पुरास्थल अथवा ऐतिहासिक टीले के क्षेत्र में किसी संस्कृति के लोग कब आए, उनकी संस्कृति का अंत कब हुआ। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों का पूर्वापर क्रम, पारस्परिक संबंध तथा सापेक्ष समय का अनुमान लगाया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 80। इस विधि में किसी पुरास्थल के सीमित क्षेत्र में प्राकृतिक स्तर के मिलने तथा उत्खनन किया जाता है। उत्खनन से प्राप्त विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं तथा पुरावशेषों एवं पुरानिधियों सहित यथावत एक अभिलेख रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है। कई पुरास्थलों के उत्खनन से यदि एक ही प्रकार का सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हो तो हमें उस संस्कृति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है, किंतु इस विधि के उत्खनन से अपेक्षाकृत एक सीमित क्षेत्र में खुदाई होने के कारण किसी पुरास्थल अथवा संस्कृति की विस्तृत जानकारी नहीं हो पाती है। मानव समाज के अनेक पक्षों जैसे आर्थिक एवं प्रशासनिक आदि के विषय में यथेष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। इस विधि से तिथि क्रम तो निश्चित किया जा सकता है, लेकिन किसी समुदाय संस्कृति अथवा सभ्यता का सर्वांगीण चित्र नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधि की खुदाई से लाभ यह है कि इसमें अधिक धन जन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में उत्खनन किया जाता है। जिस स्थान के संबंध में किसी प्रकार की पुरातात्विक जानकारी नहीं है, वहां पर इस विधि का उपयोग श्रेयस्कर माना जा सकता है। इस पद्धति से समान संस्कृतियों वाले कई स्थानों के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता मिलती है। क्षैतिज उत्खनन लंबवत या ऊर्ध्वाधर उत्खनन से जब किसी संस्कृति अथवा पुरास्थल का अनुक्रम ज्ञात हो जाता है, तब उसके समग्र स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तकनीकी आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक दशा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उस संस्कृति को जीवंत बनाया जा सकता है। किसी संस्कृति की विस्तृत एवं यथेष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरास्थल का क्षैतिज विधि से उत्खनन किया जाता है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार किसी संस्कृति का सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए जब किसी पुरास्थल के काल विशेष से संबद्ध संपूर्ण अथवा अधिकांश निक्षेप का उत्खनन किया जाता है, तो उसे क्षैतिज उत्खनन कहा जाता है। इस विधि के उत्खनन द्वारा किसी पुरास्थल के काल विशेष की सभ्यता का पूर्णतया दिग्दर्शन हो सकता है। इस विधि का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण तक्षशिला के सिरकप नामक टीले के उत्खनन से ज्ञात इंडो ग्रीक काल की सभ्यता को माना जा सकता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन तकनीक की दृष्टि से यद्यपि बहुत उत्कृष्ट स्तर की नहीं कही जा सकती है, तथापि इस नगर सभ्यता की चौड़ी एवं सीधी सड़कों, ढकी हुई नालियों, पकी हुई ईंटों के भवनों, अन्नागार एवं विशाल स्नानागार आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी क्षैतिज उत्खनन विधि के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। पृष्ठ संख्या 81। उत्खनन क्षैतिज उत्खनन उस पुरास्थल पर अधिक उपयुक्त होता है जो एकाकी संस्कृति वाले होते हैं, अथवा जहां पर स्तरों की स्थिति अपेक्षाकृत समतल धरातल पर होती है। ऐसे पुरास्थलों पर जहां विभिन्न स्तरों को पहचानना काफी सरल होता है, जहां पर स्तरीकरण में दुरूहता पाई जाती है, वहां पर उत्खनन का कार्य ऊर्ध्वाधर विधि से करना अधिक उपादेय होता है। व्हीलर का सुझाव है कि क्षैतिज उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व स्तरीकरण की जानकारी कर लेना चाहिए, अन्यथा किसी संस्कृति अथवा सभ्यता के अनुक्रम एवं कालक्रम का सही ढंग से निर्धारण नहीं हो पाता है। क्षैतिज उत्खनन के लिए अधिक धन जन एवं समय की आवश्यकता होती है। एक बार असावधानी हो जाने पर ऐतिहासिक तथ्यों के सदैव के लिए नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। शैक्षिक एवं क्षैतिज उत्खनन में संबंध पुरातत्वविदों ने शैक्षिक लंबवत एवं क्षैतिज इन दोनों उत्खनन पद्धतियों को एक दूसरे की पूरक एवं सहायक माना है। किसी भी पुरास्थल के उत्खनन के लिए दोनों विधियों का पृथक पृथक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्वापर क्रम का सामान्य नियम यह है कि सर्वप्रथम शैक्षिक उत्खनन होना चाहिए, इसके पश्चात क्षैतिज विधि से उत्खनन किया जाना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दोनों विधियों का संयुक्त रूप से उपयोग न करने से किसी भी पुरास्थल के समग्र इतिहास की जानकारी नहीं हो सकती है। शैक्षिक उत्खनन से जहां किसी पुरास्थल की विभिन्न संस्कृतियों का अनुक्रम ज्ञात होता है, वहीं दूसरी ओर क्षैतिज उत्खनन से संस्कृति अथवा सभ्यता की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। शैक्षिक उत्खनन सीमित क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों की संख्या भी सीमित होती है। शैक्षिक उत्खनन की तुलना व्हीलर ने रेलगाड़ी की एक ऐसी समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं। दिस इज द रेलवे टाइम टेबल विदाउट अ ट्रेन। क्षैतिज उत्खनन को समय सारणी विहीन रेलगाड़ी की संज्ञा दी गई है, ट्रेन विदाउट टाइम टेबल। कहने का आशय यह है कि ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी पुरास्थल अथवा क्षेत्र की विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम की तो जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन विस्तृत सांस्कृतिक विवरण के अभाव में यह जानकारी अधूरी, अपर्याप्त एवं एकांगी होती है। इसके विपरीत क्षैतिज उत्खनन से किसी काल अथवा पुरस्थल की संस्कृति के प्राय अधिकांश पक्षों की जानकारी हो जाती है, परंतु उनके काल क्रम आदि के संबंध में यथेष्ट जानकारी का अभाव खटकता रहता है। क्षैतिज उत्खनन में तिथि क्रम का ठीक से पता नहीं चल पाता है, अतः दोनों विधियों का प्रयोग किसी भी स्थान के उत्खनन में आवश्यक प्रतीत होता है। दोनों ही विधियों की अपनी अपनी उपयोगिता है। पृष्ठ संख्या 82। उत्खनन संचालक एवं कर्मचारी। उत्खनन अपेक्षाकृत एक जटिल कार्य है, जिसमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्खनन संचालक को अनुभवी, कार्यकुशल एवं परिश्रमी होना चाहिए। यह सफल उत्खनन के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। अपने देश में विशेषज्ञ जुटाने से बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर श्रमिकों की कोई विशेष समस्या नहीं है, जबकि पाश्चात्य जगत के समृद्ध देशों में श्रम के महंगे होने के कारण उत्खनन कार्य में प्रायः विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। इन सभी लोगों, विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों के बीच समन्वय एवं अनुशासन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है तथा संचालक का दायित्व होता है। विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुसार ही जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उत्खनन स्थल पर हमेशा उपस्थिति आवश्यक है। मॉर्टिमर व्हीलर ने अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर किए जाने वाले किसी उत्खनन के लिए एक निदेशक डायरेक्टर का डायरेक्टर, एक उपनिदेशक डिप्यूटी डायरेक्टर, प्रत्येक उत्खनित क्षेत्र एरिया के लिए एक एक पर्यवेक्षक, साइट सुपरवाइजर, एक प्रशिक्षित फोरमैन, एक पुरावशेषों एवं पुरानिधियों का अभिलेखक रिकॉर्डर, एक मृद्भान सहायक पोटेरी असिस्टेंट, एक फोटोग्राफर, एक सर्वेयर, एक पुरातात्विक रसायनज्ञ और आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट, एक नक्शा नवीन और आवश्यकतानुसार एक पुरालिपि विशेषज्ञ तथा एक प्राचीन मुद्राविद की संस्तुति की है। व्हीलर ने स्पष्ट इस सूची को किसी ऐतिहासिक काल के टीले के उत्खनन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। किसी प्रागैतिहासिक काल के पुरास्थल के उत्खनन के संदर्भ में विशेषज्ञों की इस तालिका में एक पूरा जीव विज्ञानविद, एक पूरा वनस्पति वेत्ता, एक पूरा पुष्प परागविद, एक भूतत्वविद, एक खनिजविद को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। प्रागैतिहासिक पुरास्थल के उत्खनन के समय व्हीलर के पूरा लेखविद एवं पूरा मुद्राविद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रागैतिहासिक अनुसंधान में विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों के विशेषज्ञों की सहायता की विशेष आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रागैतिहासिक तथ्यों का प्रत्यायन, रिकवरी और व्याख्या इंटरप्रिटेशन विशेषज्ञों के अधिकाधिक आपसी सहयोग से ही संभव है। उत्खनन के आवश्यक उपकरण एवं औजार। उत्खनन में काम आने वाले साज सामान को हम दो प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक उत्खनन संचालकों के साथ सामान, दो श्रमिकों के उपकरण। पृष्ठ संख्या 83। संचालकों के साथ सामान। एक थियोडोलाइट, दो आवश्यकतानुसार समतल मेजे प्लेन टेबल्स, तीन फीते मीटर नाप वाले टेप्स, चार एक या दो मीटर लंबे डंडे रूल्स, पांच कुतुबनुमा अथवा दिक सूचक प्राइस्मेटिक कंपास, छह ड्राइंग बोर्ड, सात रेखाचित्र बनाने के कागज ड्राइंग पेपर्स, आठ अच्छी किस्म की पेंसिलें रबड़ आदि, नौ ड्राइंग बॉक्स आवश्यक सामान सहित, दस साहुल प्लम बॉब्स, 11 चौड़ी धार वाली छुरियां बोर्ड ब्लेड्स नाइफ्स, 12 डोरियां कीले नेल्स आदि, 13 आवश्यकता अनुसार नोटबुके, 14 फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त मापक स्किल्स फॉर फोटोग्राफी और 15 स्याही तथा काला एवं सफेद पेंट तथा 16 होल्डर पेन आदि। श्रमिकों के उपकरण 1 गैतियां कुदाले, 2 छोटी गैतियां पिक्स, 3 बड़े वेलचे लार्ज सोविल्स, 1 फावड़े स्पेट्स, 4 छोटे फावड़े स्कूप्स, 5 चाकू एजिंग नाइफ्स, 6 टुकरियां तगारियां लोहे के तसले बास्केट्स और पेंस, 6 छुरियां कन्नियां शोवेल्स, 8 पाटे या पटरे प्लैंक, 9 सब्बर क्राउवर्स आदि। नगर स्थल का उत्खनन। किसी प्राचीन नगर का पुरस्थल आज या तो गांव के समतल क्षेत्र के रूप में अथवा समयावधि बीत जाने पर 20-25 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचे टीले के रूप में मिलता है। प्राचीन नगर स्थल के उत्खनन में उत्खाता का उद्देश्य इस स्थल के कालक्रम एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करना होता है। इसके लिए संबद्ध नगर की योजना, नगर विन्यास, एक काल के दूसरे काल तक उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था एवं उसकी प्रशासनिक तथा राजनीतिक अवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। नगर की स्थापना, उसका उत्कर्ष, नगर के विभिन्न क्षेत्रों की रचना, नगर निवासियों की सांस्कृतिक उपलब्धियों एवं नगर के अपकर्ष आदि से संबंधित पुरावशेषों तथा पुरानिधियों का संकलन एवं आकलन पुराविद का मुख्य ध्येय होता है। किसी प्राचीन नगर स्थल के अंतस्थल में छिपे हुए इतिहास को उद्घाटित करने के लिए पुराविद को बहुत सूझबूझ एवं समझदारी से काम करना चाहिए। नगर स्थल के सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद उत्खनन की रणनीति निर्धारित की जानी चाहिए। यद्यपि प्राचीन नगर स्थलों के टीलों के उत्खनन के विषय में किसी विशेष नियम अथवा सिद्धांत का प्रयोग सर्वत्र नहीं किया जा सकता है, तथापि पृष्ठ संख्या 84 कतिपय बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नगर स्थल के पूरे टीले का ऊपर से नीचे तक उत्खनन करना समय एवं धन के खर्च की दृष्टि से बहुत कठिन है। मनुष्य के क्रियाकलापों एवं हवा पानी आदि प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राचीन टीलों का स्वरूप बहुतः वस्तुतः बदलता रहता है। अतः टीले का भलीभांति निरीक्षण करने के बाद टीले के ढालू भाग में उस स्थान पर उत्खनन आरंभ करना चाहिए जहाँ से शीघ्रता एवं सरलता से प्राचीन अवशेषों तक पहुँचा जा सके। चुने हुए स्थान के ऊपर से नीचे तक एक चौड़ी खंती खोदी जाए। जैसे जैसे नीचे पहुँचते जाए वैसे वैसे बीच बीच में सेक्शन अथवा खड़ी काट के लिए आवश्यकता अनुसार प्लेटफॉर्म छोड़ दिए जाए ताकि उन पर खड़े होकर उत्खनन कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके बाद फिर सीढ़ीनुमा अगला प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। अनेक प्रसिद्ध नगर स्थलों के टीलों का इस विधि से सफलतापूर्वक उत्खनन किया गया है। उत्खाता का उद्देश्य नगर के उत्थान पतन का समग्र एवं सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करना है तथा सांस्कृतिक अनुक्रम तैयार करना है। यह सारा इतिहास टीलों के नीचे छिपा पड़ा है। इतिहास के इन पुरातात्विक पृष्ठों को खोलने से उत्खाता को बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए क्योंकि उत्खनन कार्य सृजन के साथ ही साथ विनाश का कार्य भी है। एक बार नष्ट हो जाने के बाद ये पुरातात्विक पन्ने फिर किसी प्रकार से नहीं जोड़े जा सकते हैं। अतः उत्खनन एवं उससे प्राप्त सामग्री का विस्तृत विवरण तैयार करना उत्खनन से कहीं ज्यादा आवश्यक है। समय एवं साधनों को ध्यान में रखते हुए उत्खाता को अपना कार्य टीले के एक अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र तक ही फैलाना चाहिए। संपूर्ण टीले को अवैज्ञानिक विधि से खोदकर साक्ष्यों को सर्वदा के लिए विनष्ट नहीं कर देना चाहिए। भविष्य में उत्खनन विधियों में सुधार एवं साक्ष्य संकलन की विधियों में परिष्कार की पूरी संभावना है। अतः उस बंद पुस्तक के अनेक पृष्ठों को अनावृत करने का दायित्व भावित खाता पर छोड़ देना दूरदर्शिता एवं बुद्धिमानी का कार्य कहा जा सकता है। ध्वस्त होने के हो जाने के बाद नगर प्राय एक बृहद टीले का रूप ले लेते हैं। टीले के केवल एक ही हिस्से का उत्खनन करके उसका सटीक सांस्कृतिक इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र सेंट्रल एरिया, रक्षा प्राचीर, परिखा, अट्टालक तथा भुज टावर्स एवं नगर द्वारों आदि को ढूंढकर इनका ग्रिड प्रणाली से अपेक्षाकृत विस्तृत उत्खनन करना चाहिए। इन क्षेत्रों का उत्खनन आरंभ करने के पूर्व परीक्षणात्मक खंतियां, ट्रायल ट्रेंचेस खोदकर इस बात का परीक्षण कर लेना चाहिए कि बात वहां पर प्राचीन नगर के पुरावशेष छिपे हुए हैं अथवा नहीं। परीक्षण खंतियां आवश्यकता अनुसार एक अथवा एक से अधिक भी हो सकती हैं। परीक्षण खंती से उपलब्ध पुरावशेषों के आधार पर जानकारी एकांकी होती है। इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि परीक्षण खात से सटे हुए पृष्ठ संख्या 85 क्षेत्र में दबी हुई कोई महत्वपूर्ण पुरानिधि छूट जाए। परीक्षणात्मक खंती की प्रमुख उपयोगिता यह है कि इससे क्षेत्र के स्तर क्रम के विषय में जानकारी मिल जाती है। प्राचीन काल में भवनों की दीवारें लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों, पक्की ईंटों तथा यदा कदा पत्थर की बनाई जाती थी। लकड़ी के अवशेषों की पहचान मिट्टी के रंग के परीक्षण पर बहुत कुछ निर्भर है। भवन निर्माण में लकड़ी के खंभों के प्रयोग के संकेत स्तंभ गर्तों के रूप में मिलते हैं। पाटलिपुत्र के कुंभार नामक स्थल के उत्खनन से इसी प्रकार के स्तंभ गर्त पोस्ट होल्स मिले थे। इनसे काष्ठ के स्तंभों के अस्तित्व का संकेत प्राप्त हुआ था। ऐसे अवशेषों का उत्खनन केवल कन्नी, चाकू एवं ब्रूस आदि की सहायता से सावधानी के साथ करनी चाहिए। मिट्टी की बनी हुई प्राचीन दीवार की पहचान एक सुदक्ष एवं अनुभवी उत्खाता ही कर सकता है। इस प्रकार के निर्माण से संबंधित स्तरों की पहचान मिट्टी के रंग एवं विभिन्न स्तरों से मिले पदार्थों के आधार पर की जा सकती है। मिट्टी की बनी हुई प्राचीन दीवार की मिट्टी अपेक्षाकृत कड़ी एवं ठोस होती है, जबकि साधारण मिट्टी नरम अथवा ढीली होती है। एशिया एवं अफ्रीका के अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में प्राचीन काल में भवनों की दीवारों को बनाने के लिए धूप में सुखाई हुई मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी में भूसा तथा घास फूस मिलाकर कच्ची ईंटें बनाई जाती थी। कच्ची ईंटों को भी मिट्टी की दीवार से पृथक करना आसान नहीं है। अनुभव एवं सतत अभ्यास से इस प्रकार का वर्गीकरण संभव है। पकी हुई ईंटों तथा पत्थर के अनगढ़ पाषाण खंडों से निर्मित भवनों को आसानी से पहचाना और पृथक किया जा सकता है। किसी भवन का उत्खनन प्रायः दीवारों के सहारे किया जाता है। प्राचीन दीवार से संबंधित विभिन्न स्तरों को यथाक्रम रखना तिथि निर्धारण के लिए बहुत जरूरी है। विभिन्न भवनों से प्राप्त पुरावशेषों को उनके कमरों के अनुसार एकत्र करने से उन वस्तुओं के सही परिप्रेक्ष्य का अधिक सुसंगत एवं तर्कपूर्ण विवेचन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित इनाम गांव नामक पुरास्थल के उत्खनन में विभिन्न कमरों की वस्तुओं को यथाक्रम रख कर उनके महत्व का आकलन किया गया है। विलुप्त दीवार यदा कदा उत्खननकर्ता को किसी भवन के उत्खनन में विलुप्त दीवार घोस्ट वॉल के संकेत मिलते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि ईंटों अथवा पत्थरों की बनी हुई प्राचीन दीवालों से इन वस्तुओं को लोग चुरा ले जाते हैं। ईंटों तथा इमारतों से प्रयुक्त पत्थरों को निकालकर ले जाने वाले न्यूनतम चौड़ी खुदाई करते हैं। इस प्रकार दीवाल अंशतः अथवा पूर्णतः गायब हो जाती है। दीवाल की खाई में अगल बगल एवं आसपास की मिट्टी भर जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का रंग बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। मिट्टी के रंग एवं बनावट के आधार पर अनुभवी उत्खाता दीवाल के अस्तित्व को खोज निकालने में सफल होता है। पृष्ठ संख्या 86। ब्रिटेन में स्थित रोम सभ्यता के काल से संबंधित वेरुलेमियम नामक स्थल के उत्खनन में सन 1931 में कैथलीन केनियन ने इस प्रकार की दीवार के अवशेषों का उत्खनन करके प्राचीन भवन के अस्तित्व का पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी। तब से अनेक पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका सफलतापूर्वक पता लगाया है। समतल नगर स्थल का उत्खनन मानव निवास के क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार की सामग्री का संचय होता रहता है। मानव द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं अथवा इच्छिष्ट एवं अपशिष्ट पदार्थों के रूप में फेंक दी जाती हैं। ये वस्तुएं समय पाकर मिट्टी में दब जाती हैं। मकानों के जब नए फर्श बनते हैं तब पुराने नीचे दब जाते हैं। भवन विशीर्ण होते हैं और उनका विध्वंस करके नवनिर्माण होता है। बाद में किसी भवन और यदाकदा नगर के ध्वस्त होने की तथा उसके अवशेषों पर जमाव की संभावना होती है। वर्षा एवं बाढ़ के बाद बस्ती का पुनर्निर्माण संभव है। कभी कभी यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है, जैसे गमनागमन से सम मार्ग का गहरा हो जाना अथवा कूड़ा कचरा फेंकने के लिए अथवा शव विसर्जन के लिए गड्ढा खोदना आदि। कहने का आशय यह है कि मानव के क्रियाकलापों एवं उपेक्षा के कारण प्राचीन नगर की सतह बदलती रहती है। उत्खनन के द्वारा इन परिवर्तनों का प्रमाण खोज निकाला जा सकता है। किसी बस्ती के फेरबदल के संबंध में इन साक्ष्यों की सहायता से न्यूनाधिक पुनर्निर्माण की आशा की जा सकती है। इसी तथ्य को लक्ष्य करके मोर्टिमर ह्यूलर ने कहा था कि उत्खननकर्ता पुरावित पुरावशेष नहीं खोदता है, अपितु वह जनसमुदाय को खोदता है। प्राचीन काल में नगर का विस्तार प्रायः सकारण एवं यथा प्रमाण रीति से होता है। नगर स्थल का मध्यवर्ती क्षेत्र पुरावशेषों एवं पुरानिधियों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। चौरस नगर स्थल का उत्खनन अपेक्षाकृत सरल होता है। प्राचीन काल में नगर का मध्यवर्ती क्षेत्र ही राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता था। इसलिए सर्वप्रथम नगर के केंद्र स्थल का क्षेत्र उत्खनन ग्रिड प्रणाली से करना चाहिए। पूरी पूरी सावधानी के साथ एक अथवा अधिक वर्गाकार खंतियों के माध्यम से क्षेत्रीय पद्धति द्वारा अप्रयुक्ता भूमि वर्जिन सॉयल तक उत्खनन करना चाहिए। इस विधि से उत्खनन के लिए निकटवर्ती वर्गाकार चार खंतियों का समूह प्राय एक उपयोगी इकाई मानी जाती है। उत्खनन हमेशा सुनियोजित ढंग से किए जाने चाहिए। मनमाने ढंग से न किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परीक्षण गर्तों ट्रायल पीट्स के संबंध में फ्लीडस पेत्री नामक पुराविद का विरोध बहुत उचित है। पेत्री का कहना है कि अगर इस प्रकार के परीक्षण गर्त के उत्खनन से कोई पुरावशेष मिल भी गया तो उसके क्षत विक्षत होने की प्रबल पृष्ठ संख्या 87 संभावना रहती है। विशेष बात यह है कि इस प्रकार से प्राप्त पुरानिधियों के वास्तविक पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य की जानकारी प्रायः नहीं हो पाती है। नगर स्थल के मध्य भाग के उत्खनन के पश्चात उसकी रक्षा प्राचीर प्राकार को खोजने का प्रयत्न होना चाहिए। रक्षा प्राचीर को किसी भी प्राचीन नगर की सामान्य विशेषता माना जा सकता है। नगर की प्रतिरक्षा के प्राचीन साधन की खोज कई दृष्टियों से के विशेष महत्वपूर्ण है। दुर्ग यदि नगर निर्माण के समय ही बना तो कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है तो यह विकसित एवं उच्च सभ्यता का सूचक हो सकता है। इसे शांति एवं समृद्धि का प्रतीक भी माना जा सकता है और इस तथ्य का भी नागरिकों ने अपनी रक्षा के लिए इसका निर्माण किया जा सकता है। रक्षा प्राचीर का निर्माण किसी नवागंतुक मानव समुदाय के प्रवेश का भी सूचक हो सकता है, जिसने विदेशी नगर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया रहा हो। रक्षा प्राचीर से किसी नगर के उत्थान पतन एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के इतिहास पर भी परोक्ष रूप से प्रकाश पड़ सकता है। रक्षा प्राचीर के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों के आकार प्रकार से आर्थिक अवस्था के विषय में अनुमान किया जा सकता है। दीवार के अंदर के गड्ढे तथा गिरी हुई ईंटें प्रायः बाह्य आक्रमण की सूचक मानी जाती हैं। प्राकार भित्ति की पुनः मरम्मत हुई या नहीं, रक्षा प्राचीर क्या स्वतः गिरने लगी थी, ये पुरातात्विक साक्ष्य किसी नगर की बिगड़ती हुई राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थिति की ओर इंगित करते हैं। जो राजनीतिक तथा आर्थिक इतिहास के अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिए उपयोगी साक्ष्य हो सकते हैं। पुरातात्विक उत्खनन। रक्षा प्राचीर के चुने हुए ऐसे स्थलों का पर उत्खनन करना चाहिए जहाँ पर पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होने की संभावना हो। खड़ी खंतियां इतनी चौड़ी एवं गहरी रखी जाए कि उत्खनन निरीक्षण आदि के लिए यथेष्ट स्थान रहे तथा आधार तल की अप्रयुक्तता भूमि तक आसानी से पहुंचा जा सके। रक्षा प्राचीर का नगर के विभिन्न सांस्कृतिक एवं निर्माण कालों स्ट्रक्चर फेजेस से संबंध स्थापित करने के लिए प्राचीर की खंतियों का विस्तार नगर के अंदर की ओर काफी दूर तक करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त नगर के द्वारों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। द्वारों के उत्खनन से द्वारपाल के निवास की व्यवस्था तथा सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नगर तोरण, राजमार्गों एवं विभिन्न भवनों आदि की समकालीनता का पता करना अभीष्ट उद्देश्य की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं अपितु अत्यंत वांछनीय है। अच्छा तो यह हो कि नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र से मुख्य नगर द्वार तक और प्राकार से नगर द्वार तक उत्खनन कराया जाए। पृष्ठ संख्या 88। टीले के अंदर दबे नगर स्थल। उत्खनन का प्रमुख लक्ष्य प्राचीन नगरों के उत्थान पतन की पूरी कहानी प्रस्तुत करना है, परंतु प्राचीन नगरों ने अपने काफी लंबे इतिहास के फलस्वरूप विशाल एवं उत्तुंग टीलों का रूप धारण कर लिया है। अतः प्राचीन नगरों का संपूर्ण इतिहास टीलों के नीचे छिपा है। उत्खननकर्ता के समक्ष यह जटिल प्रश्न होता है कि वह इन ऊंचे टीलों में किन स्थानों का उत्खनन करे, क्योंकि पूरे टीले का ऊपर से नीचे तक उत्खनन बड़ा कठिन एवं व्यय साध्य कार्य है। उत्खननकर्ता पुराविद को अपने समय एवं उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त स्थान के चयन की समस्या के समाधान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ऊंचे टीले के ऊपरी भाग में उत्खनन करने से नगर के अंतिम काल लास्ट फेज के विषय में ही प्रायः जानकारी मिल पाने की अधिक संभावना रहती है। मार्टिमर श्विलर ने इस संदर्भ में दो टीलों के उत्खननों के उदाहरणों को देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के पेशावर जिले में पेशावर कस्बे से लगभग 29 किमी उत्तर पूर्व में प्राचीन पश्चिमी गंधार महाजनपद की राजधानी पुष्कलावती के अवशेष चरसद्दा नामक स्थान में लगभग 25 मीटर कहीं कहीं पर 30 मीटर ऊंचे टीले में छिपे हुए हैं। यह स्थान लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक आबाद रहा, क्योंकि 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री वेनसोंग ने इनका उल्लेख एक आबाद नगर के रूप में किया था। सन 1902 से 3 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वावधान में जान मार्शल ने यहाँ पर लगभग 6 मीटर की गहराई तक उत्खनन संबंधी पुरावशेष मात्र ही प्राप्त हो सके थे। प्राचीन नगर का पता नहीं लग सका था। इसी प्रकार बल्ख में प्राचीन बल्ख बक्त्रा नगर के पुरावशेष एक विशाल टीले के रूप में विद्यमान है। यह नगर भी लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आबाद रहा। 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के बर्बर आक्रमण के फलस्वरूप यह नगर ध्वस्त हुआ। सन 1924 से 25 में फ्रांसीसी विद्वान मोंसिए ए फूसे को भी इस टीले की खुदाई में मार्शल की तरह का ही अनुभव हुआ। वे एक तुर्की मस्जिद के मलबे तक पहुँचे, जिसका निर्माण कुछ समय पहले हुआ था। मानव के क्रियाकलापों के अतिरिक्त वायु एवं वर्षा के कारण प्राचीन टीलों का आकार प्रकार परिवर्तित होता रहता है। पानी के कटाव कार्य के फलस्वरूप मानव आवास के सूचक स्तर प्रायः नष्ट हो जाते हैं। अतः उत्खाता को टीले का अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद टीले के ढालू किनारों पर उत्खनन प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ से वह शीघ्रता तथा सरलता से प्राचीन पुरावशेषों तक सुगमता से पहुँच सकता है। मार्टिमर व्हीलर ने पुष्कलावती के टीले के उत्खनन के लिए रक्षा प्राचीर पृष्ठ संख्या 89 के पूर्वी कोने पर ग्रिड प्रणाली से उत्खनन का सुझाव दिया था, जहां पर बाद में उत्खनन कार्य किया भी गया। व्हीलर ने बल्ख के टीले में दुर्ग के दक्षिणी प्राचीर के पास के अंदर की ओर एक लंबी खंती डालने की अनुशंसा की थी, जिससे कि इस स्थल के प्रत्येक सांस्कृतिक काल की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस प्रकार प्राचीन नगरों के टीलों का उत्खनन काफी जटिल एवं पेचीदा कार्य होता है। समय एवं संसाधनों के आधार पर उत्खननकर्ता को अपनी योजना बनानी चाहिए। जॉन मार्शल एवं मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा एवं तक्षशिला के टीलों का विधिवत उत्खनन करके भारतीय पुरातत्व के इतिहास में एक नवीन अध्याय जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, झूंसी के टीलों का उत्खनन विभिन्न विद्वानों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। कब्रिस्तान या समाधि स्थल का उत्खनन दुनिया से प्रस्थान करने वाले मृतक व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के निमित्त अंत्येष्टि की विभिन्न पद्धतियों की मानव कल्पना करता आया है। शरीर को या तो पूरा का पूरा अथवा दाह संस्कार के बाद बची कुची अस्थियों को दफनाया जाता था। यदा कदा मृतक के शरीर को थोड़े समय के लिए मांसाहारी पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। बाद में कुछ अस्थियां चुनकर धार्मिक विधि से दफना दी जाती थी। नियंडरथल मानव ने सर्वप्रथम शव विसर्जन की परंपरा को प्रारंभ किया तथा वह मृतकों के साथ प्रायः कोई सामग्री नहीं रखता था। उच्च पुरापाषाण काल से अस्त्र शस्त्र अलंकरण एवं प्रसाधन वस्तुएं अंत्येष्टि सामग्री के रूप में रखने का प्रचलन शुरू हुआ। नवपाषाण से मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन रखने की प्रथा आरंभ हुई। ऐतिहासिक काल में विश्व के कतिपय भागों में राजा रानियों को राजसी ठाट बाट एवं आभूषणों के साथ दफनाया जाने लगा। मेसोपोटामिया के उर नगर के टीले के उत्खनन से प्राप्त एक राजकीय समाधि के विषय में जो प्रमाण मिले हैं, उसमें राजा रानी एवं उनकी बहुमूल्य सामग्री के अतिरिक्त प्रिय परिजनों एवं पशुओं को भी साथ में दफनाया गया था। मृतकों को वस्त्र रहित या वस्त्रों से अच्छी तरह से लपेटकर पत्थर, मिट्टी या लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। कब्र के संकेत सूचक के रूप में या तो उसके ऊपर कोई स्मारक होता था अथवा मिट्टी तथा पत्थरों की सहायता से महास्म बना दिए जाते थे। समाधि में सामान्यतः एक ही लाश को दफनाया जाता था, परंतु कभी कभी एक ही कब्र में दो अथवा चार लाशों को एक साथ दफनाने की भी प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मध्य पाषाण काल से संबंधित महदहा में एवं दमदमा में से दो दो तथा सराय नाहर राय से चार लाशें कतिपय कब्रों में एक साथ दफनाई हुई प्राप्त हुई। पृष्ठ संख्या 90। बनावट एवं आकार प्रकार की दृष्टि से समाधियां कई प्रकार की होती हैं। एक, मिट्टी द्वारा निर्मित गोलाकार स्तूपनुमा समाधियां अथवा अनगढ़ पत्थरों द्वारा निर्मित महाश्म। दो, चौकोर आयताकार अथवा वर्गाकार समाधियां। तीन, सपाट समाधियां। समाधियों के उत्खनन में विशेष सतर्कता एवं सावधानी की आवश्यकता है। उत्खनन के पूर्व समाधि स्थल की रूपरेखा का भलीभांति सर्वेक्षण करके उसका रेखा चित्र साइट प्लान बना लेना बहुत जरूरी है। कब्रों का छायांकन करने के पश्चात ही उत्खनन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मानव कंकाल के आसपास की भूमि को सावधानी के साथ साफ करना आवश्यक है। मानव कंकाल की खुदाई करते समय हड्डियों के परीक्षण के लिए आवश्यक रसायनों की भी व्यवस्था करना जरूरी है। आश्रित जल, विनाइल एसीटेट, सेल्यूलोस, मोम आदि की पहले से व्यवस्था कर लेना उपयोगी होता है। समाधियों के उत्खनन की दो प्रमुख विधियां हैं। एक समानांतर उत्खनन, दूसरा वृत्तपात उत्खनन। समानांतर उत्खनन, उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व किसी भी समाधि स्थल के मूल स्वरूप को अक्षुण रखने के लिए सर्वेक्षण, समोच्च रेखांकन तथा छायांकन करना बहुत जरूरी है। समानांतर पद्धति में गोलाकार समाधि को कई हिस्सों में विभाजित कर लिया जाता है। उत्खनन स्थल के पार्श्वों से समकोण बनाते हुए कब्रों के दोनों ओर नंबर युक्त खूंटियों की दो समानांतर पंक्तियां 50-50 सेमी के फासले पर गाड़ दी जाती है। इसके बाद समाधि स्थल के विभिन्न हिस्सों का उत्खनन एक एक कर किया जाता है। माप त्रिविमितीय प्रणाली से की जाती है, निकट खूंटियों से नाप ली जाती है। इसी तरह अंतिम स्तर तक खुदाई एवं माप का कार्य चलता रहता है। उत्खनन की इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि उत्खनन कर्ता प्रत्येक भाग में पर्याप्त प्रकाश में आसानी से काम कर सकता है। रिकर्व टीले की एक ही अक्ष रेखा के समानांतर रहता है और दूसरी ओर की अक्ष रेखा का पूरा अंकन नहीं हो पाता है। वृत्तपात या चतुष्पाद उत्खनन, यह वैकल्पिक विधि प्रथम विधि के इस आक्षेप का निराकरण करती है कि रिकर्व केवल एक ही समानांतर अक्ष के सहारे तैयार किया जाता है। इस विधि में उत्खनन करने के लिए टीले को डोरियों के सहारे सर्वप्रथम चार भागों में बांट दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार 50 सेमी के फासले पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। ये खूंटियां प्रस्तावित स्थल से समकोण बनाती हुई गाड़ी जाती हैं, जिससे कि माप लेने में आसानी हो। किनारे की खूंटियों के शिखर पर 5 सेमी लंबी कीले गाड़ कर एक सुतली की डोरी बांध ली जाती है। इन चारों प्रतिमुखी भागों अपोजिट क्वार्टर्स के बीच में 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक भाग की इस प्रकार से खुदाई की जाती है कि टीले के आर पार दोनों दिशाओं में पूरा अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन उपलब्ध हो। पृष्ठ संख्या 91 सके। प्रत्येक चतुर्थ भाग पर दिक सूचक कंपास पॉइंट की सहायता से अंक या अक्षर लिख दिए जाते हैं अथवा कोई विशिष्ट नाम दे दिया जाता है, जैसे अ ब स द। खाके की दिक्सूचक रेखाओं में से किसी एक के पास 50 सेमी के फासले पर खूंटियों को लगाना अभिष्ट है। इन खूंटियों के सहारे प्रत्येक चौथाई भाग की अभिष्ट त्रिविमितीय माप ली जाती है। उत्खनन कार्य की अंतिम अवस्था के बीच के खुले हुए हिस्से अपने आप काट दिए जाते हैं। इस प्रकार के उत्खनन में माप लेना अपेक्षाकृत सरल एवं आसान होता है। उत्खननकर्ता के कार्य क्षेत्र का स्थान अवश्य अत्यधिक संकीर्ण रहता है। रेखा चित्र 3 वृत्तपात उत्खनन। समाधि स्थलों के उत्खनन की इन उपयुक्त दो मानक प्रणालियों के अतिरिक्त अन्य उत्खनन विधियां भी परिष्कृत एवं परिमार्जित की जा चुकी हैं, जो आपातकाल में निश्चित समयावधि में उत्खनन पूरा करने में विशेष सहायक है। परंतु इन कामचलाऊ पद्धतियों से केवल आपात स्थितियों में ही उत्खनन करना चाहिए। चौकोर समाधियां। इस प्रकार की समाधियां थोड़ी लंबी होती हैं। इनके उत्खनन के लिए समाधि की बाह्य रूपरेखा के आधार पर उत्खनन किया जाता है। उत्खनन के समय अधोलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 1. सही और स्पष्ट रूप से स्थापित की गई आधार रेखाओं का सम्यक प्रावधान होना चाहिए। 2. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व कंटूर सर्वेक्षण कर लेना चाहिए। पृष्ठ संख्या 92। 3. उत्खनन के समय एक लंबा सेक्शन या अनुभाग उस समाधि के आरपार छोड़ना आवश्यक है। इनके नीचे जमीन में कटे हुए दफनाने के गर्तों या खाइयों का भली भांति और सावधानी पूर्वक पता लगाया जाए। समाधि स्थल के अधिक से अधिक हिस्से को खोदकर उसके अंदर छिपी हुई वस्तुओं को भली भांति साफ कर देना चाहिए। 4. लंबाई में एक अनुभाग के अतिरिक्त चौड़ाई में भी कई जगह एक दूसरे को काटते हुए सेक्शन क्रॉस सेक्शन छोड़ना आवश्यक है, जिससे कि हर तरफ से इनका सहसंबंधीकरण स्थापित किया जा सके। 5. कब्र की प्रामाणिक तथा अन्य वस्तुएं जो भराव के साथ संयोगवश उसके भीतर पहुंच गई हो के विवेचन में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इनके अलग अलग करने के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु यह कार्य इन वस्तुओं की वास्तविक स्थिति तथा भराव के सामान्य प्रकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 6. समाधि स्थल का उत्खनन करते समय मानव कंकाल एवं उसके साथ मिले अंत्येष्टि पदार्थों को उसी दशा में पड़े रहने देना चाहिए। उनका रिकॉर्ड करने एवं फोटोग्राफ लेने के पूर्व हटाने के लोभ का संवरण आवश्यक है। मानव कंकाल के साथ प्राप्त पुरावशेषों को तभी उनके सही एवं वास्तविक परिप्रेक्ष्य में रखकर उनका आकलन किया जा सकता है। कलश समाधि, साधारणतः दाह संस्कार के बाद बची हुई हड्डियों को अस्थि कलश अन्न में रखकर समाधिस्थ किया जाता है था। इनके उत्खनन में भी वृत्तपात अथवा क्षेत्रीय उत्खनन विधि अपनाई जानी जा सकती है। कब्रों में मानव कंकालों एवं शवाधानों के साथ मिलने वाले पुरावशेष मानव के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के प्रतीक होते हैं, इसलिए समाधि स्थलों के उद्घाटन के लिए यह आवश्यक है कि कंकालों के साथ मिली हुई वस्तुओं का क्रमबद्ध विवरण तैयार करें। एक कंकाल के साथ मिली हुई चीजें दूसरे कंकाल के साथ प्राप्त वस्तुओं से मिलने न पाए। समाधियों के उत्खनन में स्थिरीकरण से अधिक महत्व इन बातों को देना चाहिए। बाद में बनने वाली कब्रें पहले की कब्रों से संबंधित अंत्येष्टि सामग्री को अत्यधिक पीछे ढकेल देती है। ऐसी कब्रों के उत्खनन में यह निश्चित कर पाना बड़ा कठिन होता है कि कौन सी कब्र पहले की है और कौन सी बाद की। अतः इस प्रकार की कब्रों से संबंधित साक्ष्यों का बड़ी सावधानी के साथ अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करना आवश्यक होता है।